कुंज बिहारी जय गोपी जनव गिरिवर धारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन छारी यमुना तीरवन छारी माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोकुल नंद राधा गोकुल नंद राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सतहिष्ट वाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्री झूलन यात्रा महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्यामं हिरण्यपरिधिं वनमाल्यबर्ह धातु प्रवाल नटवेशमनुव्रतांसे विन्यस्तहस्तं इतरेण धुनानमब्जं कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम। इस सुंदर श्लोक में शुकदेव गोस्वामी श्री कृष्ण का वर्णन कर चुके हैं। ये वर्णन ऐसा है कि जैसा द्विज पत्नियां देख रही हैं। जब श्री कृष्ण बलराम के साथ ग्वाल बालों के साथ विचरण कर रहे थे यमुना के तट पर एक अशोक वाटिका में, उस समय द्विज पत्नियां वहां पर पहुंची और उन्होंने ये दृश्य देखा। पहली बार उन्होंने कृष्ण का दर्शन किया। और आगे शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि दर्शन उन्होंने कैसे किया। दर्शन तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन कैसे दर्शन करना चाहिए इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। केवल थोड़ी रोशनी भगवान से लग के हमारे आंखों के अंदर जाती है और हम कुछ रूप देखते हैं, क्या उतना ही करना दर्शन है या दर्शन वास्तव में इससे भी कुछ अधिक है? सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, प्राय श्रुत प्रियतमोदय कर्ण पूरैर यस्मिन् निमग्न मनसस्तमथाक्षिरन्ध्रैः अन्तः प्रवेश सुचिरं परिरभ्यतापम् प्रज्ञाव्यथाम्भिमतयो विजहुर्नरेन्द्रम्। प्रायः श्रुत प्रियतम उदय, प्रायः यह इस शब्द का मतलब है कि बार बार लंबे समय से, श्रुत उन्होंने सुना था, प्रियतम मतलब जो उनके प्रिय हैं, कौन है? कृष्ण। उदय मतलब उनकी कीर्ति, बार बार वो सुन चुके थे ये द्विज पत्नियां, इसलिए भली भांति परिचित थे श्री कृष्ण के गुणों से, उनके सौंदर्य से। और अभी आगे ये सुन सुनकर, इतना सुना था उन्होंने और इस भाव से सुना था कर्ण पूरे, कि ये जो भगवान श्री कृष्ण का गुणगान है ये उनके कानों के आभूषण बन गए थे। तो उनके कानों के आभूषण कोई सोने के या मोतियों के नहीं बने हुए थे, भले पहने भी होंगे वो दूसरी बात है, लेकिन सच्चे आभूषण जो थे वो भगवान श्री कृष्ण का गुणगान था जो कि वो बार बार सुन रहे थे। तो ये भी हमारे जीवन में सच्चा आभूषण है। इस दुनिया की सोना चांदी मोती रत्न इत्यादि तो ठीक है, शरीर के लिए ठीक है, लेकिन वास्तव में हमारे सच्चे आभूषण होने चाहिए हमारी वैष्णवता। वैष्णवता के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि ये सारे गुण होने चाहिए वैष्णव के। और प्रमुख जो गुण वैष्णव का ये होता है कि वो भगवान श्री कृष्ण से आकर्षित होता है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनना चाहता है, बोलना चाहता है, सेवा करना चाहता है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत है। श्रील हरिदास ठाकुर भी एक जगह हरिनाम चिंतामणि नाम के ग्रंथ में कहते हैं कि वैष्णवों के कई एक गुण हैं, लेकिन स्वरूप लक्षण जो मूल गुण वैष्णव का है कि वो भगवान के शरणागत है। शरणागति से अन्य जितने भी गुण हैं वो आते हैं, और शरणागत का मतलब है कि अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना और भगवान के अलावा किसी और व्यक्ति की परवाह नहीं करना। परवाह नहीं करना इसका मतलब ये नहीं कि हम सबसे गलत व्यवहार करेंगे या सबसे प्रेम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, लेकिन हम हर एक व्यक्ति को, हर एक चीज को, हर एक घटना को भगवान श्री कृष्ण के संबंध में देखते हैं। तो इसी प्रकार से इन द्विज पत्नियों ने बार बार भगवान श्री कृष्ण का गुणगान सुन सुन के, सुन सुन के ये जो गुणगान है ये उनके कानों के आभूषण बन गए थे। और यस्मिन निमग्न मनसः, और उनका मन मनसः निमग्न मग्न हो गया था पूरी तरह से इस गुणगान में। इसका मतलब है कि जिस बारे में हम श्रवण करेंगे उसी के बारे में हम स्मरण करेंगे, क्योंकि हम पहले भी सुन चुके हैं कि इन द्विज पत्नियों ने पहले श्री कृष्ण का दर्शन कभी नहीं किया था, केवल सुना था, सुनने मात्र से मन मग्न हो गया। वैसे श्री कृष्ण परम सत्य है। आध्यात्मिक स्तर में व्यक्ति और उसका वर्णन इसमें कोई अंतर नहीं है, या उसका नाम उसमें कोई अंतर नहीं। जैसे इस जगत में हमें अगर प्यास लगे हम केवल पानी 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 कहेंगे तो हमारी प्यास बुझेगी नहीं, हमें जाकर पानी वास्तव में पीना होगा तब प्यास बुझ जाएगी। लेकिन वैकुंठ जगत में ऐसा नहीं है। अगर किसी को पानी कहना है वो पानी कह दे, केवल सोचे तो पानी हाजिर, अगर प्यास है भी बुझ जाएगी, वैसे वहां किसी प्रकार का क्लेश नहीं है जैसे यहाँ भूख है और प्यास है, तरह तरह के कष्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। वो तो वैकुंठ है जिसमें कोई कुंठ नहीं। फिर भी अगर कोई पानी चाहे तो केवल पानी के बारे में सोचने से या पानी शब्द का उच्चारण करने मात्र से उसे पानी मिल जाएगा। यह ऐसा नहीं है। तो कृष्ण पूरी तरह से चिन्मय है, इसलिए जब हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं या कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से साक्षात श्री कृष्ण वहां उपस्थित होते हैं। इसलिए जब द्विज पत्नियां बार बार श्री कृष्ण के बारे में सुन रही थी, नित्यम भागवत सेवया, ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक बार भागवत सेवया, रोज भागवत सेवा, नित्यम। नित्यम के दो अर्थ होते हैं, नित्य मतलब रोज और नित्य मतलब हमेशा सदैव, रोज में एक बार भी नहीं, जितना हो सके उतना। इस प्रकार से उनका मन मग्न हो गया श्री कृष्ण में। तम अथाक्षी रंध्रैर अंतः प्रवेश्य सुचिरम। इस समय जबकि वो पहली बार श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे थे तो उनकी आंखें अक्षय ही, अथाक्षी, अक्षी मतलब आंखें, रंध्रई वो द्वार बन गई। किसके लिए? श्री कृष्ण को अंदर अंतः प्रवेश, अपने आंखों के द्वार के माध्यम से उन्होंने श्री कृष्ण को अपने अंतःकरण में खींच के रख लिया। पहले केवल वर्णन से उन्होंने अनुमान लगाया था, लेकिन अब प्रत्यक्ष देख रहे थे तो उनके आंख द्वार या खिड़की के समान बन गए और इसके अंदर से वो कृष्ण को ले लिए और अंतःकरण में रख लिया। अंतः प्रवेश सुचिरम परिरभ्यतापम। और फिर जो लंबे समय से उनके हृदय में वो एक कष्ट था कि हम श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाए, वो कष्ट दूर हो गया क्योंकि अभी वो उनकी आंखों के सामने श्री कृष्ण को देख रहे थे। प्रज्ञाम यथा अभिमतयो विजहुर नरेंद्र। तो जिस प्रकार से हे राजन, जो ऋषि मुनिगण होते हैं वो बहुत तपस्या करते हैं और तपस्या के बाद अपने साधना के बल पर, अपने आध्यात्मिक बुद्धि के बल पर, अपने इंद्रियों को वश में करने के बल पर वो अपने अहंकार को त्यागते हैं, अपने देह बुद्धि को त्यागते हैं और इस प्रकार से वो अपने दुख को त्यागते हैं। उसी प्रकार से इन द्विज पत्नियों ने भी इस दर्शन के बाद जो भी विरह का ताप था या दुख था उसको त्याग दिया। तो इस प्रकार से वो कृष्ण से एक हो गई, ऐसा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। लेकिन ये एकता मायावादियों की एकता नहीं है। मायावादियों की एकता क्या है कि हम जो आत्मा है हम श्री कृष्ण में लीन हो जाए और फिर हमारा व्यक्तित्व ही खत्म हो जाए। परंतु जीव का व्यक्तित्व कभी खत्म नहीं हो सकता। जीव सनातन श्री कृष्ण का अंश है। सनातन शब्द का तात्पर्य है कि कभी ऐसा समय नहीं था जबकि जीव भगवान का अंश नहीं था, अब भी नहीं है और भविष्य में भी ऐसा समय नहीं आएगा। श्रील रामानुजाचार्य बताते हैं कि सनातन शब्द का तात्पर्य है जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। तो जब श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, कि ये जीव मेरे सनातन अंश है, इसका मतलब है कि जीव का अंशत्व ये सनातन है, न इसकी कोई शुरुआत है न इसका कोई अंत है। तो जीव कभी एक नहीं हो सकता इस दृष्टि से कि उसका व्यक्तित्व कभी नष्ट नहीं हो सकता। अगर जीव जाके परब्रह्म में मिल जाए और उसका व्यक्तित्व खत्म हो जाए, इसका मतलब है कि अंश पूर्ण बन गया है। लेकिन यह तो संभव नहीं है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सनातन ये मेरे अंश है। तो वैष्णव आचार्यों ने समझाया है कि ये एकता जो है ये भक्ति या प्रेम की एकता है। इच्छा की एकता है, शरणागति की एकता है। इन गोपियों ने भी भगवान श्री कृष्ण की गीता का आदेश पालन किया था। हालांकि अब तक गीता बोली नहीं गई थी, क्योंकि ये तो वृंदावन की लीला चल रही है। आगे चल के मथुरा से जाकर फिर द्वारका जाएंगे, द्वारका में फिर हस्तिनापुर में जा कुरुक्षेत्र में जाकर वो गीता का संदेश बोलने वाले हैं। इसके लिए और 100 साल या ज्यादा बाकी है। फिर भी भगवद गीता का ज्ञान तो है वैसे ही। तो इस समय हम देख रहे हैं कि द्विज पत्नियों ने शरणागत वो शरण ग्रहण किया है भगवान श्री कृष्ण का। और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कृष्ण के आदेश का पालन करके अपने सारे जो भौतिक कर्तव्य हैं, अपने तथा कथित धार्मिक कर्तव्य हैं, उनको त्याग दिया है। और सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, तास्तथा त्यक्त सर्वशाह प्राप्ता आत्मा दिदृक्षया विज्ञाखिल त्रिगद्रष्टा प्राह प्रहस्तिनाननः। तो भगवान श्री कृष्ण है दृग्दृष्टा, अखिल दृग्दृष्टा। इसका मतलब है कि सब चीजों का दर्शन करते हैं, वो सब चीजों को जानते हैं, सबके हृदय में अंतर्यामी के रूप में स्थित हैं। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है जो कि श्री कृष्ण नहीं जानते हैं। हम भले दूसरों से हमारे हृदय की बात छुपाएं, लेकिन श्री कृष्ण से नहीं छुपा सकते, क्योंकि वो हृदय में ही बैठे हैं। हम हमारी इच्छाओं को अच्छी तरह से जानते हैं। और अखिल दृग दृष्टा, फिर भगवान श्री कृष्ण ने जान लिया कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, और फिर हंस के प्राह प्रहसित आनन, प्रहसित मतलब हंसते हुए, अरविंद पे हंसी थी। और उस समय हंसी मिटाने के लिए कोई ऐसे भीषण राक्षसों की आवाज बार बार नहीं आती थी, जैसे ये रेलगाड़ी है, ये असुर ही है, समझ लीजिए ये आधुनिक असुर है। हाँ, वैसे वृंदावन में आया करते थे वो भी, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण हसमुख रहते थे। जब भी वो असुरों का वध भी करते थे तो हसमुख करते थे। गोवर्धन को उठाया तो हसमुख चेहरे से उठाया। हम वजन उठाते हैं तो हसमुख नहीं रहते। तो प्रहसित आननः, तो हसमुख चेहरे से श्री कृष्ण अब उपदेश करने लगे इन द्विज पत्नियों को। तो आइए सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या आदेश दिया। स्वागतम वो महाभागा आस्यताम करवामकिन यन्नो दिदृक्षया प्राप्ता उपपन्नम इदम हिवः। स्वागतम वह महाभागा, स्वागतम स्वागतम, आइए आइए, बहुत भाग्यशाली आप सब हैं। हे द्विज पत्नियां, आपका स्वागत हो, आके बैठिए। आस्यताम, आस्यता मतलब आसन ग्रहण कीजिए, आइए बैठिए। करवाम किम, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, हाथ जोड़ के कृष्ण पूछ रहे हैं। यन्न दिदृक्षया प्राप्ता उपपन्नम इदम हि वह, कि आप मेरे दर्शन के लिए यहां आए हैं, ये बहुत ही उचित है, ये सही है। क्यों सही है वो आगे चल के बताने वाले हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने इन द्विज पत्नियों को उसी प्रकार से स्वागत किया जैसे कि उन्होंने गोपियों के को स्वागत किया था थोड़े समय पहले, जबकि वो अपने घरों को त्याग कर वंशीवट पर आए थे श्री कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए। तो गोपियों ने अपने शुद्ध भक्ति का प्रमाण का सबूत दिया था कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों की इच्छाओं को ठुकरा कर वो सीधे कृष्ण के पास आए थे। तो उसी प्रकार से जो ब्राह्मणों की पत्नियां हैं उन्होंने भी ऐसे ही किया। तो इसलिए श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया, बिठाया और फिर कहा, नन्मद्धा मयि कुर्वन्ति कुशलाः स्वार्थदर्शिनः अहैतुक्यव्यवहिताम् भक्तिम आत्मप्रिये यथा। स्वार्थ दर्शिनः, जो लोग बहुत अपने स्वार्थ को जानने में कुशल होते हैं, कुशलाः स्वार्थ दर्शिनः, वो लोग क्या करते हैं, वो मेरा दर्शन करते हैं और मेरी भक्ति करते हैं। अहेतुकी अव्यवहिताम, अहेतुकी मतलब बिना कोई भौतिक हेतु के, अव्यवहिताम मतलब बिना कोई रुकावट के, भक्तिम वो मेरी भक्ति करते हैं क्योंकि वो अपना हित जानने में बड़े कुशल हैं। स्वार्थ दर्शिनः मतलब अपने स्वार्थ को देख सकते हैं या जान सकते हैं। तो यहां पे जो स्वार्थ शब्द है वो बुरा नहीं है। जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं और उस दृष्टि से केवल शरीर का हित चाहते हैं, तो वो स्वार्थ जो है वो हमें यह भौतिक जगत में बांध के रखता है। परंतु जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं या जानते हैं और उस हिसाब से हम कोई कार्य करते हैं और हमारा हित चाहते हैं, तो वो स्वार्थ अच्छा है। तो भगवान श्री कृष्ण इस दूसरे स्वार्थ की बात कर रहे हैं, तो असली स्वार्थ है। असली स्वार्थ क्यों है? क्योंकि असली स्व वो आत्मा है, शरीर नहीं है। तो फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो साधु है, ऋषि मुनि है, भक्त है, जो अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा हित किस में है, वो मेरी भक्ति करने लगते हैं। और क्यों? आत्मप्रिय यथा, क्योंकि आत्मा जो है वो बहुत प्रिय है व्यक्ति को, और मैं व्यक्ति आत्मा के लिए बहुत प्रिय हूं, मैं आत्मप्रिय हूं, इसलिए हर एक व्यक्ति जो बुद्धिमान है उसे मेरी सेवा करनी चाहिए, मेरी भक्ति करनी चाहिए। प्रहलाद महाराज भी ऐसे ही कहते हैं ना, नते विदुः स्वार्थ गतिम् हि विष्णुं दुराशयाये बहिरर्थमालिनः। कि कई लोग ऐसे हैं दुनिया में, ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो अपना स्वार्थ नहीं जानते हैं, क्योंकि वो बाहरी चीजों से आकर्षित हो जाते हैं, बाहर के चमक धमक से आकर्षित होकर अपना सच्चा हित जो है वो नहीं पहचानते हैं। अपना स्वार्थ, अपना हित किस में है? कि हम भगवान विष्णु के शरण में जाकर उनकी सेवा करें। तो यहां श्री कृष्ण इसी बात को बोल रहे हैं और श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि भगवान के शरण में जाने से ही हमारा सर्वोच्च हित हो सकता है। और इस प्रकार से ये जो शरणागति का पथ है सबसे मांगल्यमय, मंगलमय पथ है। हर एक व्यक्ति को इस पथ को स्वीकारना चाहिए। हर एक व्यक्ति अपने आप को अपने आप की प्रेम करता है, वो अपने आप से प्रेम करता है। परंतु जब व्यक्ति जान लेता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं और आत्मा श्री कृष्ण का अंश है, तो वो खुद ब खुद कृष्ण की सेवा करेगा और कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत करने की इच्छा रखेगा। इस प्रकार से श्री कृष्ण आदेश देते देते उनसे कहने लगे कि अभी आप लौट के चले जाओ। तत् यात देव यजनम पतयो वो द्विजातयः स्वसत्रम पारयिष्यन्ति युष्माभिः गृहमेधिनः। कि आपके पति जो हैं वो आपकी राह देख रहे हैं, क्योंकि कोई धार्मिक कार्य जो है एक गृहस्थ अकेला नहीं कर सकता, पत्नी भी साथ में होनी चाहिए, इसलिए पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं। तो धार्मिक कार्यों में दोनों का होना आवश्यक है। इसलिए जब श्री रामचंद्र भी यज्ञ करना चाहते थे तो उन्होंने क्या किया, जब सीता देवी वनवास में थी तो उन्होंने क्या किया, सोने की मूर्ति बनाई सीता देवी की। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अब वापस जाओ, अपने पतियों का साथ दे दो, क्योंकि वो यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकते जब तक कि आप सब उनके साथ में नहीं रहेंगे तब तक। तो श्री कृष्ण ने ऐसे ही आदेश गोपियों को भी दिया था। उनका स्वागत किया था। स्वागत करने के बाद उनको उपदेश देने लगे, देखो अच्छा नहीं है, बीच रात में आप कहाँ आए, आप सब महिलाएं हैं, आप सब अपने अपने घर में रहते हैं, ये नैतिकता के सिद्धांतों के अनुसार नहीं है, तो आप चले जाइए। तो उसी प्रकार से यहां भी श्री कृष्ण द्विज पत्नियों को कह रहे हैं कि आप चले जाइए, आपके पतिगण जो है वो सब यज्ञ कर रहे हैं, तो उनका साथ आप दीजिए। तो आगे चल के जो पत्नियां हैं वो तो लौट के जाने वाली हैं, गोपियां नहीं गई, ये एक अंतर है। श्री कृष्ण के आदेश अनुसार द्विज पत्नी आगे चल के घर चली गई, हालांकि वो नहीं जाना चाहती थी, फिर भी चली गई, क्योंकि कृष्ण ने ऐसे आदेश किया था, लेकिन गोपियां नहीं चली गई। एक अंतर दोनों में अभी आता है। फिर गोपियां नहीं, अब द्विज पत्नियां, उन्होंने जब ये आदेश सुना तो उनको अच्छा नहीं लगा, जैसे गोपियों को भी अच्छा नहीं लगा, और फिर वो विरोध व्यक्त करने लगी और कहने लगी, मयवम विभो अर्हति भवान गदितुम नृशंसम, कि आप इस प्रकार से नृशंसम ये कठोर शब्द बोल रहे हैं, गदितुम ये उचित नहीं है आपके लिए, हम इतना सब छोड़ के आए हैं और अभी आप ऐसे कठोर वचन हमें बोल रहे हैं कि आप वापस घर चले जाओ, ये ठीक नहीं है। सत्यम कुरुष्व निगमम, आपके वचन को आपको पूरा करना चाहिए, आपका वचन है कि जब भी कोई भक्त आपके पास आता है आप उसको लौटाएंगे नहीं, आप अवश्य उस भक्त को शरण देंगे। जैसे विभीषण भी जब आए थे प्रभु रामचंद्र के पास, तो अन्यों ने कहा नहीं हो सकता है, ये जासूस है, ये कौन है, क्या पता, लेकिन प्रभु रामचंद्र ने कहा नहीं, जो शरणागत होके आए हैं उनको शरण देना मेरा कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने शरण दिया। तो उसी प्रकार से यहां गोपियां कह, द्विज पत्नियां कह रही हैं कि आपको आपके वचन को पूर्ण करना चाहिए, शास्त्र में बार बार ये पढ़ने में आता है सत्यम कुरुष्व, कि आप को ये सही करना चाहिए, निगमम जो आपका वचन है। तव पाद मूलम प्राप्ता वयम तुलसी दाम पदा वृशिष्टम केशे निबोधुम अतिलंघ्य समस्त बंधुन, देखिए हम समस्त बंधुओं को हमारे रिश्तेदारों को त्यक्त्वा हम त्याग करके यहां पर आए हैं। और गोप द्विज पत्नियां सोच रही हैं कि अगर श्री कृष्ण सोचे कि अरे आप सब तो ब्राह्मण हैं, मैं तो वैश्य हूं, और आप सब मेरी सेविकाएं बनेंगी, मेरे सेवक बनेंगे, ये ठीक नहीं है, तो फिर द्विज पत्नियों के मन में उत्तर है, लेकिन हम तो शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा ना तो ब्राह्मण है, ना वैश्य है, ना कुछ है, और अगर श्री कृष्ण कहे कि भाई मेरी तो मेरे जो सेवक हैं वो केवल वृंदावन के निवासी हैं, गोप गोपियां हैं, और आप तो ब्राह्मण हैं जो वृंदावन के थोड़े सीमा पर रहते हैं, तो फिर द्विज पत्नियां कहती हैं ठीक है, फिर हम आपके लिए कोई कष्ट नहीं करेंगे, हम दूर में रहेंगे, दूर में रह के आपकी सेवा करेंगे। किस प्रकार से हम आपकी सेवा करेंगे, प्राप्ता वयम तुलसी दाम पदा अवसृष्टम, जो आपके चरणों में तुलसी दल जो आपके भक्तों ने अर्पण किए हैं, और जो आप चलते चलते उनको अपने चरण कमलों से हटा देते हैं, उन तुलसी दलों को हम लेकर हमारे सर में धारण करेंगे, ग्रहण करेंगे, और इससे हम संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि हमें बिल्कुल सबसे सामने होना है। देखिए यह है भक्ति, भक्ति का मतलब है ऐसा नहीं कि हर बार हमें सामने ही होना है, सबके दृष्टि में होना है कि देखो हम भी कितनी सेवा कर रहे हैं, नहीं, आवश्यक नहीं है। भगवान कृष्ण हमारी सेवा को देखते हैं, भले दूसरे कोई देखते हो या नहीं देखते हो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जब कोई बड़ा उत्सव हो रहा हो, या बड़े उत्सव के समय भी नहीं, साधारण भी, अगर कोई भक्त ऐसे स्थान में सेवा कर रहा है या कर रही है जहां कोई देख नहीं रहे हैं, किसी को पता भी नहीं कि ये भक्त क्या सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो सेवा बहुत हृदय से, दिल से कर रहे हैं, और वह सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी को पता नहीं, कोई प्रशंसा नहीं करता उनकी, कोई प्रोत्साहन नहीं देता उनको कि बहुत अच्छा सेवा आपने किया। वो करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, कभी कभी निराश भी हो सकते हैं, अरे कोई हम जानते भी नहीं कि हम ये सेवा करते हैं, कोई हमारी प्रशंसा नहीं करते, लेकिन उनकी प्रशंसा होती है, उनकी हो रही है, उनकी हो रही है, उनकी हो रही है, मेरी नहीं हो रही है, कोई पहचान भी नहीं रहा कि मैं सेवा कर रहा हूं या कर रही हूं। तो यहां द्विज पत्नियों के उदाहरण से हम जान सकते हैं कि भले इस संसार में लोग पहचाने या नहीं पहचाने, जाने या नहीं जाने, हमारी प्रशंसा करें या नहीं करें, श्री कृष्ण तो अवश्य देख रहे हैं। और भक्त वो है जो पीछे रह के भी सेवा करने के लिए संतुष्ट है, अगर वो सही है तो। परंतु आगे आके सेवा करने की आवश्यकता है तो वो भी करने के लिए तैयार है, उस समय हिचकिचाना नहीं चाहिए। नहीं, मैं अयोग्य हूं। योग्य कौन है इस दुनिया में? सभी अयोग्य हैं, केवल कृष्ण के आदेश से हम योग्य हो जाते हैं। कृष्ण ही योग्य हैं, कृष्ण के शुद्ध भक्त ही योग्य हैं, हम बाकी सब अयोग्य हैं। तो योग्यता आती है जब हम योग्य व्यक्तियों के आदेश अनुसार कार्य करते हैं, वो हमारी योग्यता है, और कोई योग्यता हमारी नहीं है। योग्यता आती है उस आदेश के पालन करने से, फिर वो शक्ति मिलती है और फिर जाके हम अद्भुत से अद्भुत कार्य कर सकते हैं। जब श्रील प्रभुपाद जी ने इस कौन संस्था की शुरुआत की अमेरिका में, उनके साथ में कौन थे? क्या बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, बड़े बड़े अनुभवी प्रचारक थे, संस्कृत के पंडित थे, भागवत कथाकार थे? इन्होंने भागवत का नाम भी पहली बार सुना था उस जब गए थे वहां, जब युवतियां युवक वहां प्रभुपाद जी के पास आए थे, उनको कुछ नहीं पता था भगवत गीता के बारे में, कृष्ण के बारे में, हरि नाम के बारे में। धीरे धीरे उन्होंने सीखा, और जैसे ही थोड़े महीने हो गए और उन्होंने अपने सारे बुरे आदतों को त्याग दिया, और वो जप करने लगे, प्रवचन में आने लगे, प्रसाद सेवा करने लगे, एक दो साल के अंदर, जबकि वो इतने कच्चे थे, और ऐसा नहीं कि उनको बचपन में ये संस्कार मिले थे, वो भी नहीं, सारे विपरीत संस्कार उनको मिले थे। उनके घरों में कहां कृष्ण भक्ति होती थी, चारों नियम तोड़े जाते थे घरों में भी। तो ऐसे बुरे संस्कारों में पाले पोसे हुए नौजवान और नवयुवतियां एक दो साल भक्ति में आने के बाद प्रभुपाद जी ने उनसे कहा कि आप लंदन चले जाओ, लंदन जाके मंदिर खोलो। अरे मंदिर खोलो क्या? कुछ नहीं पता, कितने अयोग्य है, हमको ठीक कुछ भी नहीं मालूम। जैसे एक नए भक्त आए हैं, बस आ ही रहे हैं अभी मंदिर में, और हमको बोले आप जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया देश में जाओ, वहां मंदिर खोलो। अरे बोले हम कैसे खोलेंगे, हमको कुछ नहीं मालूम है, क्या करेंगे, बिल्कुल अयोग्य है, घबरा जाएंगे। तो ये भक्त भी थोड़े चिंतित हो गए, हम कैसे कर सकते हैं ये सब। प्रभुपाद जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, कृष्ण के शरण में रह के करो। तो वो चले गए, और जाके उन्होंने वहां क्या किया, प्रभुपाद जी ने जैसे उनको आदेश दिया था वैसे किया। रोज हरिनाम संकीर्तन सड़कों पे करते थे, पुस्तक वितरण करते थे, जो भी उनको मालूम था वो प्रचार करते थे लोगों को। और क्योंकि उनका उत्साह था, प्रेम था प्रभुपाद जी के लिए और कृष्ण के लिए, कृष्ण को तो वो इतनी तरह से अच्छी तरह से जानते नहीं थे, सुने थे बहुत कुछ कृष्ण के बारे में, लेकिन प्रभुपाद जी को तो प्रत्यक्ष देखे हुए थे। तो प्रभुपाद जी से इतना प्रेम करते थे, इसलिए जाके प्रचार करना शुरू किया, और उनके ये साहस हुआ कि बड़े बड़े व्यक्तियों के पास गए। केवल ऐसे रास्ते में जाके ऐसे नहीं, रास्ते में तो किया ही, साथ साथ बड़े व्यक्तियों के पास भी गए। जैसे वहां उस समय बहुत विश्व प्रसिद्ध संगीतकार थे, एक दल था जिसका नाम था बीटल्स, सारी दुनिया उनके लिए पागल हो रही थी, इंग्लैंड के रहने वाले थे वो। जैसे यहाँ खिलाड़ियों के लिए और अभिनेता अभिनेत्रियों के लोग पागल होते हैं, उसी प्रकार से विदेश में इन लोगों के पीछे लोग पागल हो गए थे। तो सीधे ये जो भक्त हैं वो उनके पास चले गए और उनको प्रचार करने लगे, और उनमें से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉर्ज हैरिसन, विशेष करके उनको प्रचार किया, और वो इतने प्रभावित हो गए कि आगे चलकर उन्होंने उनका सारा बड़ा बंगला जो है और उसमें 50-60 एकड़ की जमीन है वो उन्होंने दान में दे दिया प्रभुपाद जी को। और आज भी वो मंदिर है लंदन के बाहर जिसको भक्ति वेदांत मैनर कहते हैं, वो बीटल्स के संगीतकार ने वो दान दिया प्रभुपाद जी को। और पहली बार जब प्रभुपाद जी ने कृष्ण बुक, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम ये किताब छापना चाहा, तो जॉर्ज हैरिसन ने ही उस छापने के लिए दान दिया, पैसे दान दिए। तो गए उन्होंने धीरे से ये चालू किया मंदिर, ऐसे ही शुरू हो गया। और केवल ऐसे नहीं, अन्यों को भी धीरे धीरे भेजते गए दुनिया के कोने कोने में, केवल अमेरिका में नहीं, हर जगह हर देश में, कहीं अफ्रीका में जाओ, तुम भारत में जाओ, तुम जापान में जाओ, तुम चीन में जाओ, तुम इधर जाओ, बस भेजते गए प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद जी के आदेश के ऊपर इतना विश्वास था इन भक्तों को कि उन्होंने सोचा नहीं कि हम लोग अयोग्य हैं, प्रभुपाद जी योग्य हैं और हम उनके आदेश का पालन कर रहे हैं, इसलिए इसमें हमारी योग्यता है। और जाके उन्होंने कितने चमत्कार कर दिए, क्या चमत्कार, 12 वर्षों में 108 मंदिर बने। और कहां बने, ऐसा नहीं कि केवल भारत में बने, दुनिया के कोने कोने में बने। और वहां प्रचार शुरू हुआ, लाखों की संख्या में भगवद गीता आदि ग्रंथों का वितरण हुआ, लाखों की संख्या में लोग पहचानने लगे कि यह हरे कृष्ण आंदोलन क्या है, कुछ है। पहले किसको पता था कि यह क्या है, केवल इसलिए हुआ कि अयोग्य व्यक्तियों ने योग्य व्यक्ति के आदेश का पालन किया और श्रद्धा रखा उस आदेश में। तो इसी प्रकार से किसी व्यक्ति को नहीं सोचना चाहिए, किसी भक्त को नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो बिल्कुल अयोग्य हूं, मैं ये कैसे कर सकता हूं। अगर श्री कृष्ण की सेवा के लिए आवश्यक है कि हम सामने आए, हमें आना चाहिए। और अगर सामने आने की आवश्यकता नहीं है तो जानबूझकर सामने आने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, फिर पीछे पीछे संतुष्ट है, श्री कृष्ण सब कुछ कर रहे हैं, देख रहे हैं। भक्त को चाहिए आदेश का पालन और सेवा भक्ति भाव से, श्रद्धा पूर्वक, तब चमत्कार हो सकते हैं। गड़बड़ तब होती है जब हर एक व्यक्ति श्रेय चाहता है, मैंने किया, मेरा नाम हो जाए कि ये काम मैंने किया। बाहर की दुनिया में यही चल रहा है ना, हर एक व्यक्ति चाहता है कि जो भी अच्छा काम हो, जो भी बड़ा काम हो, उसका श्रेय मुझे मिल जाए। हम एक बार आपसे भी कह चुके थे मेरे ख्याल से, जब मिले थे एक मीटिंग में, कि एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो इस्कॉन के भक्त नहीं थे, ये 300 साल पहले की बात या 200 साल जो भी है, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। कभी कभी जो भक्त नहीं होते वो भी बीच बीच में कभी अच्छी बातें बोल देते हैं और उनको भी हम ग्रहण कर लेना चाहिए, अगर वो सही बात है, अच्छी बात है, तो उसको सुनने में कोई आपत्ति नहीं है। वो कहते हैं कि अगर कोई लोग मिल जाते हैं और कोई कार्य करना चाहते हैं, तो जो कार्य वो करना चाहते हैं वो इतने चमत्कार का कार्य हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर हर एक व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि श्रेय मेरा होना चाहिए, अगर हर एक व्यक्ति सोचता है कि श्रेय किसका हो इसकी परवाह हम नहीं करेंगे, अगर लोग ऐसा सोचेंगे तो चमत्कार के कार्यों की कोई सीमा नहीं है। सारे दुनिया को एक दिन में कृष्ण भावना भावित बना सकते हैं, सारे दुनिया का परिवर्तन हो सकता है। दुनिया में झगड़े तो इसलिए चल रहे हैं ना, हर एक व्यक्ति चाहता है मुझे पद चाहिए, मुझे श्रेय चाहिए, मुझे प्रसिद्धि चाहिए। तो द्विज पत्नियों के उदाहरण से देखिए हम कितना सीख सकते हैं। जैसे ही द्विज पत्नियों को पता चला कि देखो हम ब्राह्मण हैं और ये तो गोपगण है, वैश्यगण है, और इनके बीच में हम आएंगे तो ये थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है, और कृष्ण के सेवक तो केवल ब्रजवासी हैं, गोपगण हैं, गोपियां हैं, इसलिए हम दूर में ही रहेंगे, दूर रह के हम सेवा करेंगे, संतुष्ट रहेंगे। और किस प्रकार की सेवा, जो उनके चरण कमलों से गिरे हुए या भगवान श्री कृष्ण ने हटाए हुए जो तुलसी दल है वो हमारे सर में हम रखेंगे, शिरोधारी। तो दूर रह के भी आदेशों को शिरोधारी कहना ये महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से यहां पर श्री कृष्ण के आदेश को मानने की तैयारी में है, हालांकि उनको अच्छा नहीं लग रहा है। और आगे फिर वो कहती हैं कि हमारे पिता पितागण, हमारे पति, हमारे पुत्र, हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार, वे हमें वापस नहीं लेंगे, तो फिर क्या होगा? इसलिए हम जब आपकी शरण में आए हैं तो अभी ये उचित नहीं है कि आप हमें ठुकरा दें यहां से। इसलिए हे परंतप, अभी हमारी इच्छाओं को आप पूर्ण कीजिए, क्योंकि हम अभी आए हैं आपके पास और वहां पीछे कोई हमें लेगा नहीं, क्योंकि उनका विरोध करके हम आए हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस संदर्भ में कहते हैं कि इन द्विज पत्नियों ने लंबे समय से सुना था, किनके किनके मुख से सुना था, कौन थे जो बोलते थे? क्या ब्राह्मणों से मुख से सुना था? कल किसी ने प्रश्न पूछा था कि जब द्विज पत्नियों ने सुना तो ब्राह्मणों ने क्यों नहीं सुना, ये प्रश्न था ना। और इसका उत्तर ये है कि द्विज पत्नियों ने सुना था उन महिलाओं से जो कि फूल बेचने के लिए आते थे, जो तांबूल बेचने के लिए आते थे, जो फल बेचने के लिए आते थे, जो महिलाएं अपनी टोकरी लेकर आती थी बेचने के लिए, वो गुणगान करती थी, उनसे बार बार सुनते थे। ऐसे नहीं कि वो बड़े ब्राह्मणों के पास जाकर, कथाकारों के पास जाकर प्रवचन बैठ के सुनती थी, ऐसे नहीं। साधारण लोग जो कृष्ण से प्रेम करते थे, वो वृंदावन से आते थे और वो भी कृष्ण के बारे में बोले जाते थे, और उनसे वो बार बार सुनते थे, उनके मुख से सुनकर वो कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गईं। और इस प्रकार इतना स्नेह उनका बढ़ गया कि वो अपने घर को भी त्यागने के लिए तैयार हो गई थी, और वो प्रार्थना कर रही थी कि आपके चरण कमल ही केवल हमारे लिए एकमात्र एक गति हो। श्री कृष्ण ने उनको सांत्वना दी। श्री कृष्ण ने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसी कोई चिंता नहीं करो। पतयः न अभ्यसूयरन, कि आपके जो पतिगण हैं आपसे ईर्ष्या नहीं करेंगे, आपसे द्वेष नहीं करेंगे, आपसे गुस्सा नहीं करेंगे, इसलिए आप चले जाना और चिंता नहीं करना कि आपको कोई तकलीफ होगी। यहां तक कि जो देवतागण हैं वो भी कहेंगे कि हाँ तथास्तु, अच्छी बात है, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भय मत कीजिए, चले जाइए। न प्रीतये नुरागाय ह्यंग संगो नृणाम इह तन्मनोमय युञ्जाना अचिरान माम अवाप्स्यथ। अंग संग, अगर आप मेरे सानिध्य में रहना चाहते हैं, प्रत्यक्ष मेरे पास में रहना चाहते हैं, तो न प्रीतये न अनुरागाय, ये अन्यों को संतुष्ट नहीं करेगा। लोग कहेंगे कि ये कैसे हो गया, ये ब्राह्मण ये कृष्ण के पास कैसे आ गए, उनके साथ में कैसे रहते हैं, तो लोग निंदा करेंगे, ये ठीक नहीं है। और दूसरा कारण ये है कि केवल मेरे साथ में रहना, इससे आपकी भक्ति बढ़ेगी ये निश्चित नहीं है। और तरीका है जो अभी आने वाले श्लोक पे हम पढ़ेंगे, भक्ति बढ़ाने का मार्ग कौन सा है वो श्री कृष्ण आगे बताने वाले हैं। वो कहते हैं कि केवल मेरे सानिध्य में रहकर भक्ति होगा, ऐसे आवश्यक नहीं है। इसलिए केवल आपका मन जो है मेरे ऊपर आप केंद्रित कीजिए। तन मनह मई युंजाना अचिरान माम अवाप्स्यथा, और इसलिए अचिरान मतलब बहुत ही जल्दी अवाप्स्यथा आप मुझे प्राप्त करोगे। भले आप मुझसे दूर रह रहे हो, परंतु आपका मन मुझ में केंद्र करोगे आप, तो जल्दी ही मुझे प्राप्त कर लोगे। ये नहीं सोचना कि केवल मेरे पास में ही रहना है भक्ति करने के लिए, तभी आप भक्ति कर पाओगे, ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं कि जब वो दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे संन्यास लेने के बाद, तो उनके साथ में एक भक्त आए, अन्य भक्तों ने भेजा उसको कि तुम जाके महाप्रभु की सेवा करो। तो सेवक के रूप में वह महाप्रभु के साथ भ्रमण कर रहे थे, उनका नाम था काल कृष्णदास। लेकिन एक जगह वो भी पथ भ्रष्ट हो गए। चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते हुए, स्वयं श्री कृष्ण के साथ रहते हुए 24 घंटे वो कहीं किसी और आकर्षित हो गए और वहां चले गए। और फिर चैतन्य महाप्रभु को जाके अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करके, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके, जबरदस्ती काल कृष्णदास को खींच के ले आना पड़ा। खतरे का वातावरण था क्योंकि वो लोग आक्रमण करने के लिए तैयार थे। फिर चैतन्य महाप्रभु ने एक शब्द नहीं कहा काल कृष्णदास से। और जब वापस पहुंचे जगन्नाथपुरी, तब कहा कि अब मैं कृष्णदास के साथ, मुझे नहीं चाहिए। फिर अन्य जो है भक्त, वो बड़े कृपालु हैं, तो उन्होंने किसी प्रकार से कृष्णदास को सेवा में लगा दिया। चलो बंगाल में जाओ, भक्तों को जाके संदेश दे दो कि महाप्रभु बुला रहे हैं। इस तरह से भक्तों ने कुछ ना कुछ कृपा करके सेवा में उसे रख दिया। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये जो यहां श्री कृष्ण बोल रहे हैं सही है कि श्री कृष्ण हमारे सामने होने चाहिए, तब हम भक्ति करेंगे तो हमारी भक्ति के लिए अच्छा होगा, ऐसे नहीं है। वाणी की सेवा करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। वपुह और वाणी, ये दो चीजें हैं। वपुह मतलब हमें शारीरिक सानिध्य प्राप्त होता है, हमारे पास में रहते हैं, और वाणी मतलब आदेश। तो ये जो नए भक्त थे जो प्रभुपाद जी ने भेजे सब जगह, वो कितना सानिध्य प्राप्त किए, कितना संग प्राप्त कर रहे थे प्रभुपाद जी के। वो तो कोई लंदन में है, कोई कहाँ है, और प्रभुपाद जी भी दुनिया भर भ्रमण कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। केवल उनके मन में आदेश था प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी ये चाहते हैं इस प्रकार से प्रचार हो तो हम करेंगे। तो आगे चल के फिर कृष्ण भगवान एक महत्वपूर्ण आदेश देने वाले हैं। तो आइए ये श्लोक हम पढ़ते हैं। श्रवणान दर्शन ध्यान मई भावो नु कीर्तन न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान्। श्रवणाद् दर्शनाद् ध्यानाद् भावो नु कीर्तनात्। न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहा। श्रवणान् दर्शनान् ध्यानान् मयि भावो नु कीर्तनात्। न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान्। बोलिएगा।
श्रवणाद् दर्शनाद् ध्यानात्
प्रतीयात ततो ग्रहान्
श्रवणादर्शनाध्याना
मयि भावो नु कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो गृहान् श्रवणात् कीर्तनात् ध्यानात् मयि भावो नु कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो गृहान् माताजी श्रवणादर्शनाध्यानान् मयि भावो नु कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो गृहान् श्रवणात् सुनने से दर्शनात् अर्चा विग्रह के स्वरूप का दर्शन करने से, जैसे जैसे हम शब्दार्थ बोलते जाते हैं आप ध्यान से श्लोक को देखिएगा, हर एक शब्द का अर्थ ध्यान में रखिएगा। ध्यानात् ध्यान करने से मयि मेरे लिए भावः प्रेम अनुकीर्तनात् मेरे नाम तथा गुणों का कीर्तन करने से न नहीं तथा उसी तरह से सन्निकर्षेण निकट रहने से प्रतीयात लौट जाओ ततः अतएव गृहान् अपने घरों को। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद भी, मेरे विषय में सुनने, मेरे अर्चा विग्रह स्वरूप का दर्शन करने, मेरा ध्यान धरने तथा मेरे नामों एवं महिमाओं का कीर्तन करने से ही मेरे प्रति प्रेम बढ़ता है, भौतिक सानिध्य से नहीं। अतएव तुम लोग अपने घरों को लौट जाओ। महत्वपूर्ण है ना आदेश। मेरे विषय में सुनने, बोलिए, मेरे अर्चा विग्रह स्वरूप का दर्शन करने, मेरा ध्यान धरने तथा मेरे नामों एवं महिमाओं का कीर्तन करने से ही मेरे प्रति प्रेम बढ़ता है, भौतिक सानिध्य से नहीं। अतएव तुम लोग अपने घरों को लौट जाओ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अपना साधन भजन तुम यहीं अपने घरों में रह के करो। ऐसा नहीं समझो कि भौतिक निकटता से, शारीरिक निकटता से तुम्हारा भगवत प्रेम बढ़ने वाला है। तो तुम्हें अपने घरों में रह के क्या क्या करना चाहिए? पहली बात, श्रवणात्, श्रवण किसका श्रवण करना चाहिए? भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए। दूसरा दर्शनाथ, कहाँ पे दर्शन कर सकते हैं? अर्चा विग्रह का। तो हम मंदिर आते हैं, मंदिर में श्री विग्रह का दर्शन करते हैं। फिर तीसरा ध्यानाथ, भगवान के बारे में चिंतन मनन करने से। बाकी फिर और मई भाव अनुकीर्तनात्, मई भाव बाद में आएगा, अनुकीर्तनात्। अनुकीर्तनात् मतलब भगवान श्री कृष्ण के नामों का, उनके महिमाओं का कीर्तन करना। किस प्रकार से कीर्तन करना? अनु अनुकीर्तनात्। अनु शब्द के कई अर्थ होते हैं। अनु का एक मतलब है कि बार बार करना, ऐसा नहीं कि एक बार कीर्तन कर लिया और फिर विश्राम, अब मुक्ति मिल गई जब से हरि नाम से मोक्ष प्राप्त हो गया, नहीं, बार बार हरि नाम लेते रहना है। ये अनुशब्द का एक मतलब है। अनुशब्द का दूसरा मतलब है जो भक्ति भाव से किया जाता है। तो जो हम कीर्तन करते हैं वो भक्ति भाव से करना चाहिए, न कि केवल एक यंत्र की तरह। जो मशीन बजता है, मशीन में भी या पोपट भी, तोता जो होता है वो भी ऐसे बोलता है, लेकिन उस प्रकार से नहीं। अनु शब्द का और एक अर्थ होता है कि पीछे पीछे चलना। तो किनके पीछे चल के कीर्तन करना? महाजनो येन गतः स पंथा, जो महाजनों ने पथ दिखलाया है कीर्तन करने के लिए, उस प्रकार से हमें कीर्तन करना चाहिए। हमारे मनगढ़ंत ढंग से कोई नया रास्ता नहीं निकालना चाहिए जप करने के लिए, कि हमने जप करने के लिए कुछ नया रास्ता ढूंढ निकाला है, नहीं। महाजनों ने जैसे बतलाया है वैसे हमें जप कीर्तन आदि करना चाहिए, कोई नए आविष्कार की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान कहते हैं श्रवणाद, दर्शनाद, ध्यानाद, अनुकीर्तनाद, ये चार चीजें हैं। इससे क्या हो सकता है? मई भाव, यह भाव का अर्थ है प्रेम। तो ये चार चीज करने से मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। न तथा सन्निकर्षेण, जिस प्रकार से प्रेम उत्पन्न होगा ये चार चीज करने से, उतना प्रेम उतनी भक्ति मेरे सानिध्य में रहकर भी नहीं होगा, अगर आप ये चार चीजें नहीं कर रहे हैं तो। और अगर मुझसे दूर रह के भी ये चार चीजें आप कर रहे हैं तो आपको भक्ति या कृष्ण प्रेम अवश्य प्राप्त होगा, और फिर आप मेरे दर्शन के योग्य हो जाएंगे, मेरे धाम में आने के योग्य हो जाएंगे, और गोलोक वृंदावन में मेरी निकट मेरे सानिध्य को प्राप्त करने में योग्य हो जाएंगे। इसलिए आप इस समय अगर मेरे निकट रहना चाहते हो तो इससे समाज में गलतफहमी हो सकती है, लोग निंदा कर सकते हैं, लोग गलत समझ के भौतिक दृष्टि से इसको सोच सकते हैं। इसलिए प्रतियात ततः गृहान, अपने घरों में, गृहों में आप चले जाइए वापस, और घर में जाके अच्छी तरह से मेरी भक्ति कीजिए। इस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि द्विज पत्नियों ने कृष्ण के इस बहुत महत्वपूर्ण आदेश को स्वीकार किया और फिर यज्ञवाटम पुनर्गताः इत्युक्ता द्विज पत्न्यास्ता यज्ञवाटम पुनर्गताः। यज्ञवाटम मतलब यज्ञस्थली, यज्ञस्थली पे पुनः गता, फिर से वो वहां पर वापस चले गए, जबकि श्री कृष्ण ने ऐसे उनसे आदेश किया था। तेच अनुसूयः ताभिः स्त्रीभिः सत्रम अपारयम्। और जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपने पत्नियों में कोई दोष नहीं देखा, जैसे कि श्री कृष्ण उनको सांत्वना दी थी कि आपके पति भूल जाएंगे, वो ईर्ष्या नहीं करेंगे या आपके प्रति वो आपकी भर्त्सना नहीं करेंगे तो आप चले जाओ, तो जैसे श्री कृष्ण ने कहा था वैसे ही ब्राह्मणों ने फिर से उनको स्वागत कर लिया। अनुसूय शब्द का प्रयोग यहाँ किया जाता है, भगवद गीता में भी हम ये शब्द पढ़ते हैं ना, कहाँ पे? नौवे अध्याय का पहला श्लोक कौन सा है? इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात। हे अर्जुन, मैं तुम्हें यह गुह्यतम ज्ञान दे रहा हूं क्योंकि तुम अनसूय हो, असूया तुम्हारे हृदय में नहीं है, ईर्ष्या तुम्हारे हृदय में नहीं है, इसलिए तुम इस ज्ञान गुह्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक पात्र व्यक्ति हो, योग्य हो। तो ब्राह्मण भी हैं, वो अपने पत्नियों के भक्ति के बल पे पछतावा करने लगे। किस प्रकार से पछतावा करने लगे वो हम आज दोपहर में चल के सुनेंगे। तो अगर आपको सुनना है कि ब्राह्मण लोग भी कैसे भक्त बन गए, कैसे उनको पछतावा हुआ, तो आप दोपहर को आइए, फिर आगे बात पढ़ाएंगे। हरे कृष्णा। आपके कोई प्रश्न है? जी, प्रश्न ये है कि महाजनों ने जैसे पथ दिखलाया है वैसे हमें उस पथ पे चलना है, तो इसका क्या मतलब है? हमारे लिए प्रभुपाद जी हैं जो हमारे संस्था के बल्कि जारे विश्व के महत्वपूर्ण शिक्षा गुरु हैं। उन्होंने अपने ग्रंथों में, अपने आदेशों में बतलाया है कैसे हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, किस प्रकार से हमें ध्यान से जप करना चाहिए, उस प्रकार से हमें बोलना चाहिए। साथ साथ उन्होंने कीर्तन की पद्धति भी बताई, कीर्तन कैसे करना चाहिए, तो उस हिसाब से हम आगे चलते जाएं, फिर रास्ता बहुत आसान बन जाएगा। हमें किसी भी चीज की आविष्कार करने की आवश्यकता नहीं है, कोई नई चीज ढूंढने की बात नहीं है, केवल जैसे हमें बताया गया है वैसे हम करते रहें, बस जीवन सफल हो जाए, कोई कठिनाई नहीं है। आज व्यासदेव को महाजनों में एक क्यों नहीं माना गया है? वैसे तो महाजन केवल ही 12 हैं, अवश्य सुखदेव गोस्वामी जब वर्णन करते हैं भागवत में कि 12 द्वादश महाजन हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई 13वां व्यक्ति नहीं है महाजन। महाजन तो कितने हैं, अनेक हैं। महाजन जो महान जन है, महान व्यक्ति है, जो भगवान के बड़े भक्त हैं, वो सब महाजन कहलाते हैं। परंतु विशेष करके यमराज ने इन 12 लोगों का वर्णन किया है 6 स्कंद में श्रीमद् भागवत के। लेकिन हाँ, इनके अलावा भी और कितने हैं, लेकिन व्यासदेव के पुत्र का नाम है बादरायणी वैयासकी। वैयासकी मतलब शुकदेव गोस्वामी, और व्यासदेव का गुरु का नाम भी है नारद। जब द्विज पत्नी भगवान कृष्ण के पास गए थे तब भगवान केवल 6-7 साल के थे, तो द्विज पत्नी की कैसी निंदा कर सकते हैं लोग? वो ब्राह्मणी थी और ये है वैश्य, और ये ब्राह्मणी कहां किसी वैश्य लड़के के पीछे, भले वो छोटा लड़का हो, 7 साल का हो, फिर भी दिखने में वो थोड़े ज्यादा लग रहे थे, 10-12 साल के लग रहे थे, क्योंकि कृष्ण अपने उम्र से 1.5 गुना ज्यादा बड़े लगते हैं। जब उनकी उम्र 10-11 साल की हो गई तो वो एक 15 साल के युवक की तरह प्रतीत होते थे, क्योंकि पद्म पुराण में बताया है कि महान व्यक्ति जो अपने उम्र से 1.5 गुना ज्यादा बड़ा लगते हैं, प्रतीत होते हैं। तो फिर भी जब लोग देखेंगे कि ये क्या है, यहाँ के द्विज पत्नी है, यहाँ आके वैश्यों के साथ में है, वो तो ब्राह्मणों के साथ में रहना चाहिए, तो लोग निंदा करेंगे, ये कारण था। और कोई प्रश्न? हाँ,
द्विज पत्नियों को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको सानिध्य में रहने की आवश्यकता नहीं है, आप भूल रहे कि भी इनके श्रवण ध्यान अनुकीर्तन से आप मेरे को प्रेम पा सकते हैं, इसके बाद में आप डायरेक्ट के गुरु वृंदावन में आप मेरे साथ में आ सकते हैं। और अल्टीमेट और सारी चीज जाने की बात है।
प्रश्न ये है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये चार चीजें आपको करनी चाहिए, है ना? ये चार चीजें आप करेंगे, श्रवण, दर्शन, ध्यान और अनुकीर्तन, तो फिर सानिध्य में रहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब ऐसा आप करेंगे, अंततः फिर आप मेरे सानिध्य को प्राप्त करेंगे। तो अंत में सानिध्य की बात आती है, अवश्य आती है। लेकिन प्रभु, लेकिन कृष्ण भगवान बात कर रहे हैं इस समय की, जबकि हम भौतिक जगत में हैं, जबकि हमारी भक्ति की सर्वोच्च परिपूर्णता को प्राप्त हम नहीं कर चुके हैं, जब तक हम साधक हैं या साध्य अवस्था को भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन फिर भी यहां पर भौतिक जगत में हैं। जब इस भौतिक शरीर को त्याग देंगे और गोलोक वृंदावन जाएंगे, तब तो सानिध्य मिलना ही मिलना है। लेकिन इस समय केवल सानिध्य के पीछे, निकट होने के पीछे नहीं जाना, बस दूर भले रहे, लेकिन ये चार चीजें हमें करते रहना चाहिए। ठीक है? कल के प्रवचन के बारे में बिल्वा मंगल ठाकुर को भगवान ने वृंदावन जाते वक्त बीच में छोड़ दिया, तो वे आगे किसके साथ गए? वो वृंदावन पहुंचने के बाद ये हुआ। जब वृंदावन शहर पहुंचे ही, उस समय श्री कृष्ण ने उनको छोड़ दिया। अब वृंदावन आ गए हैं, उस समय श्री कृष्ण निकल के चले गए। ये भी बताया हुआ है कि वो बिल्वा मंगल ठाकुर ऐसे कृष्ण भगवान को शिक्षा गुरु मानते हैं, डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण उनके शिक्षा गुरु हुए। चिंता मणिर जयति सोम गुरुर गुरुर में, सोम गिरीर गुरुर में, शिक्षा गुरुश्च भगवान शिख पिछ मौली ही। उन्होंने कृष्ण कर्णामृत में श्लोक लिखा है कि चिंतामणि मेरी जय जयकार हो, क्योंकि वो मेरे वर्तमान प्रदर्शक गुरु हैं, उन्होंने मुझे पथ दिखलाया। सोमगिरी मेरे दीक्षा गुरु हैं, सोमगिरिर गुरुर में, और साथ साथ में शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखी पिच्छ मौलिही। शिक्षा गुरु मेरे वो भगवान हैं जिन्होंने अपने बालों में क्या लिखा है, मोर पंख लगाया है। वो मेरे डायरेक्ट प्रत्यक्ष शिक्षा गुरु है। ये श्लोक चैतन्य चरितामृत में आता है, आदि लीला में। तो वो पहुंच गए थे बिल्वा मंगल ठाकुर, श्री कृष्ण वृंदावन तक ले गए थे उनको, और बाहर बस वो फिर छूट के चले गए। प्रश्न ये है कि जो गोपियां थीं वृंदावन में, वो पिछले जन्म में सब ऋषियां वगैरह थीं, तो ये द्विज पत्नियां क्या थीं? वैसे सब गोपियां पूर्व जन्म में ऋषियां थीं ऐसा नहीं है, तरह तरह की गोपियां थीं। उनमें से एक प्रकार की गोपी वो थीं जो कि साक्षात भगवान कृष्ण के साथ गोलोक वृंदावन से उतर के आई थीं। गोप और गोपियां दोनों, जैसे नंद महाराज, श्रीमती राधा रानी, ललिता, विशाख, अन्य गोपियां, वो नित्य सिद्ध कहलाती हैं। तो वो गोलोक वृंदावन से कृष्ण के साथ आई थी यहां पर। साथ साथ में और भी हैं जो सिद्ध हुए कृपा से या साधना से, और जो द्विज पत्नियां हैं वो उन्होंने अपना जीवन सफल कर दिया, कैसे, कृपा से। ठीक है, इस विषय के बारे में दोपहर में हम चर्चा करेंगे। और कृपा सिद्ध और साधना सिद्ध, ये द्विज पत्नियां कृपा सिद्ध के श्रेणी में आते हैं। उनके ऊपर भगवान ने कृपा कर दी और सबसे ऊंचा स्थान या पद उनको प्राप्त हो गया। तो गोपियों में से थोड़े ऐसे थे, सब नहीं, अनेक ऐसे थे जो पूर्व जन्म में दंडकारण्य के ऋषि थे और अन्य जगह भी ऋषि थे, कोई मूर्तिमान उपनिषदों के ऋषि थे। तो तो उसी प्रकार से द्विज पत्नियां भी को ऐसे हुई होंगी, नहीं तो ये मौका कैसे मिलता उनको कि वो वृंदावन के थोड़े से बाहर बस जन्म लेते। ब्रजभूमि ही है, ब्रजभूमि के अंदर ही थे, वो ब्रजवासी भी थे, और उनको अचानक इतना आकर्षण हो गया सुनने मात्र से। तो पिछले जन्म का कोई विशेष संस्कार तो है, अन्यथा कैसे हो पाता। हम लोग इतना सुनते हैं फिर भी हमें द्विज पत्नियों की तरह प्रेम नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि पिछले जन्म में उतना कुछ हमें नहीं किया होगा, इसलिए इस जन्म में इतना स्वाभाविक आकर्षण नहीं है। लेकिन जैसा जैसा करेंगे, श्रवणात, दर्शनात, ध्यानात, अनुकीर्तनात, मई भाव हो जाएगा, कृष्ण के प्रति भाव या प्रेम आ जाएगा करते करते। अभी हमें इसी जीवन में जाना है, तो फिर आगे हमारे लिए पिछले जन्म में क्या हुआ उसकी बात नहीं करनी है। हमें ऐसे ठान लेना चाहिए, बस झाला, बहुत हो गया, ये भौतिक जगत बहुत हो गया, हर जगह झंझट झगड़ा, जहां देखे तकलीफ तकलीफ तकलीफ, बहुत हो गया, सब जगह दुख तनाव चिंता, कहीं भी कुछ ठीक ठाक नहीं, सब गड़बड़ ही मामला है ये भौतिक जगत में। क्योंकि यहां सब लोग कृष्ण से भिन्न सब कुछ देख रहे हैं। अगर सभी लोग कृष्ण भावना भावित हो जाएं, शुद्ध भक्त बन जाएं, तो ये भौतिक जगत भी वैकुंठ बन जाएगा, लेकिन ऐसे संभावना कुछ कम है। हालांकि चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन अब बहुत बढ़ता जाएगा और कई लोग ज्यादातर भक्त बन जाएंगे, फिर भी भौतिक जगत तो भौतिक जगत है। तो हमें ठान लेना चाहिए कि अब इसी जीवन के अंत में हम चले जाएंगे, और नहीं भी चले गए फिर भी कोई नुकसान नहीं, अगले जन्म में भगवान गारंटी देंगे, हाँ ले जाएंगे आप। और कोई प्रश्न?
ब्रज शब्द का क्या अर्थ है?
ब्रज शब्द का अर्थ क्या है? वास्तव में यह ब्रज है, व। कभी कभी देखा जाता है कि पूर्व भारत में या उत्तर प्रदेश में व का ब हो जाता है, वो व का उच्चारण नहीं करते। जैसे बिहारी, बांके बिहारी, वो बिहार है, बिहार करने वाले, विहार का बिहार हो जाता है, बिहारी, बांके बिहारी, कुंज बिहारी। तो उसी प्रकार से है ये व्रज, लेकिन साधारण बोली में ब्रज हो जाता है, ब्रजवासी, वो वासी है, ब्रजवासी, लेकिन वो ब्रजवासी हो जाता है। तो मूल शब्द है व्रज, व्रज मतलब जाना, संस्कृत भाषा में व्रज धातु मतलब जाना, लेकिन जाने का विशेष मतलब यह है जहां गाय जाती हैं, जहां गाय विचरण के लिए जाती हैं, वो भूमि व्रज है, व्रज भूमि, जिस भूमि में गाय चरती हैं, जहां कृष्ण भी विचरण किया करते थे गायों को पीछे पीछे, वो ब्रज है। और कई लोग हैं जो अलग अलग अर्थ भी देते हैं, जिस भूमि का रज ब है, ब्रह्म है, वो भी ब्रज, ऐसे भी कई लोग बोलते हैं, लेकिन मूल अर्थ यही है, ये है ब्रज भूमि। ठीक है, हाँ माता, प्रश्न है कि आत्मा परमात्मा साथ में ही हृदय में स्थित है, तो परमात्मा आत्मा को क्यों नहीं संभाल लेते? संभालते हैं, इसलिए तो हम सबको यहाँ राधा गोकुलन मंदिर में लाए हैं, नहीं तो हमें कहीं और ले जाते। ये तो भगवान की कृपा है कि भगवान आत्मा का साथ दे रहे हैं बारंबार, लेकिन भगवान हालांकि बार बार प्रयास करते हैं, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं करते आत्मा से। अगर आत्मा नहीं चाहती है भगवान श्री कृष्ण के शरण में आने के लिए, तो फिर भगवान ऐसे जबरदस्ती नहीं करते। ठीक है, तुम्हें भोग करना है, मुझसे दूर रहना है, रहो, लेकिन देखो ऐसा करने से ये होगा। जैसे माता पिता एक बड़े लड़के को, जब लड़का बड़ा हो जाता है, अभी स्कूल से बढ़ के कॉलेज में जाने लगता है, अभी उसको स्वतंत्रता चाहिए, अपना स्कूटर चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, फिर अपने मित्रों के साथ इधर उधर घूमने लगता है, ये चाहिए वो चाहिए, फिर माता पिता बोलते हैं देखो ठीक है हम दे रहे हैं, लेकिन देखो जिम्मेदारी से रहना, अभी तुम बड़े हो गए हो, अभी हम तो तुम्हें छोटे बच्चे की तरह दबा के नहीं रख सकते, लेकिन याद रखो हम दे रहे हैं लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी। अब तुम गलत काम करोगे तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। माता पिता जबरदस्ती से बच्चों को रख नहीं सकते, किस उम्र तक रख सकते, फिर उसमें प्रेम नहीं होगा। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण भी जबरदस्ती नहीं करते हैं आत्मा से। वो कहते हैं कि देखो ये पथ है, गीता भागवत में संदेश देते हैं अच्छी तरह से। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा यथेच्छसि तथा कुरु। अब मैंने जो बोलना था सब बोल दिया, अब हे अर्जुन जैसे तुम चाहते हो वैसे करो, मेरा काम खत्म, अब तुम्हारा काम शुरू। जब तुम ये काम शुरू करोगे तब भी मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। ऐसे नहीं कि भक्ति कर जब शुरू होती है तो भगवान कहते हैं ठीक है अभी हम छोड़ देंगे, नहीं, भगवान हर पल साथ देते हैं, आत्मा के हमेशा साथ में रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो भगवान की कृपा, भगवान का साथ अवश्य आत्मा के साथ है, ठीक है। हरे कृष्ण। कि हम भक्ति करते हैं भगवान के पास जाने के लिए, लेकिन ऐसे देखा जाता है कि गोपियां आई, गुरु जी पत्नियां आई, वो भगवान के पास आई, भगवान ने वापस भेज दिया, तो हमें भी भेज देंगे तो क्या होगा, ठीक है। तब तक वापस भेजेंगे जब तक हम पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। जब तक हम पूरी तरह से ये चार चीजों में परिपक्व नहीं हुए हैं, श्रवण, दर्शन, ध्यान, अनुकीर्तन, इन चार चीजों में जब तक हम पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुए हैं तब तक भगवान बोलेंगे अभी तक आने के लिए योग्य नहीं हो, ठहरो, अभी तक ठहरो, रहो। पूरी तरह से शत प्रतिशत शुद्ध हो जाओ, शुद्ध भक्त हो जाओ, फिर मेरे धाम में तुम आओगे, फिर सानिध्य सनातन काल चलेगा। तो भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि उनके सानिध्य को प्राप्त करना इतना सस्ता नहीं है, इतना आसान नहीं है कि थोड़ा जप कर लिया और भगवान सामने आ गए, ऐसा नहीं। हमें बहुत लंबे समय तक परिश्रम करना चाहिए। यह है कि सुखदेव परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को क्यों चुना भागवत सुनने के लिए, जबकि वहां पर व्यासदेव थे, नारद मुनि थे जो सुखदेव गोस्वामी के गुरु थे, उनके परम गुरु थे, फिर भी सुखदेव गोस्वामी ने भागवत की कथा की, ऐसा क्यों? ये परीक्षित महाराज ने नहीं चुना, वहां जो एकत्र ऋषि गण थे उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को चुना। जब परीक्षित महाराज आए थे तो उन्होंने वहां एकत्र हुए ऋषि मुनियों को पूछा कि जिस आदमी की मृत्यु होने वाली है, जो मृत्यु के द्वार पे खड़ा है, उसका क्या कर्तव्य है, उसे किसके बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए। तो भिन्न मत हुए, किसी ऋषि ने ऐसा कहा, किसी मुनि ने वैसा कहा। ठीक उसी समय सुखदेव गोस्वामी वहां पर आए भगवान की योजना से। भगवान भी उनके हृदय में अंतःकरण में परमात्मा के रूप में स्थित हैं, तो सुखदेव गोस्वामी भगवान के आदेश अनुसार चलते चलते विचरण करते करते वहां पर आ पहुंचे। और जैसे ही वो आए, नारद मुनि और व्यासदेव छोड़कर सभी लोग खड़े हो गए, क्योंकि देख के ही उनको पता चला कि ये विशेष व्यक्ति ही आत्म साक्षात्कारी है, ये व्यास पुत्र, और ये उपदेश दे पाएगा। और फिर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को, जो कि 16 वर्ष के युवक थे, उनको व्यासासन पर बिठाया और फिर कहा परीक्षित महाराज से, अभी आप इनसे पूछिए। फिर परीक्षित महाराज ने सुखदेव महाराज से प्रश्न पूछना शुरू किया और श्रीमद् भागवत शुरू हो गया, ठीक है। और कोई प्रश्न? हाँ जी। माइक आएगा आप? एक मिनट, बकासुर को थोड़ा अपनी आवाज बंद करने दीजिए।
If they have got some business there, और सम लैमिनेशन और जो की का प्रेजेंटेशन होता है एंड एंड सेकंड पार्ट इज बेसिकली ऑल दिस थिंग्स यू थिंक शवना दर्शना ध्यान कैन दे बी डन अलोन और क्लियर टॉकिंग अबाउट दिस सेशन ऑफ ड्यूटी ऑफ थिंग्स बिकॉज़ दिस एसोसिएशन बेसिकली इज नॉट विद कृष्णा एट द मोमेंट इज टॉकिंग अबाउट बट अबाउट डिवोटीज
तो आपका पहला प्रश्न ये है कि दर्शनार्थ के बारे में बताया गया है कि हमें भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करना चाहिए। तो भक्तों के घरों में भी विग्रह होते हैं, चित्र होते हैं भगवान के, तो क्या उनका दर्शन मात्र करने से काफी नहीं है कि मंदिर में आना होगा? जब मंदिर में नहीं आ सकते तो घर में दर्शन कीजिए, लेकिन जब पहला मौका मिलता है मंदिर आने के लिए तो मंदिर में आके दर्शन कीजिए, क्योंकि 24 घंटे तो मंदिर में नहीं रह सकते। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक हम आए यहां मंदिर में, यथाशक्ति यथासंभव हम आए, क्योंकि हमारे संसार के कई कर्तव्य रहते हैं जिनकी वजह से हम हमेशा तो नहीं आ सकते, लेकिन जितना हो सके हमें प्रयास करना चाहिए आने के लिए, भगवान का दर्शन करें। यहां वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है, यहां जिस प्रकार से विग्रह की उपासना होती है, आराधना अर्चना विधि अर्चना होती है, वो घर में संभव नहीं है। जिस प्रकार से यहाँ श्रृंगार है, सब कुछ है, जो वातावरण है वो घर में नहीं हो सकता, इसलिए मंदिर का वातावरण अलग ही है। इसलिए जहां तक हो सके हमें मंदिर भी आना चाहिए, और अगर दिन में एक बार हो सके कम से कम कि दर्शन करें तो बहुत ही अच्छा है। दूसरा प्रश्न ये है कि जब कीर्तन ध्यान आदि करना होता है तो हम अकेले कर सकते हैं क्या? तो हम जब कीर्तन शब्द की चर्चा कर रहे थे तो यह शब्द है अनुकीर्तनात्, और हमने कहा था कि जैसे महाजनों ने बताया है वैसे हमें करना चाहिए, है ना? तो अनुकीर्तन को समकीर्तन भी कहते हैं, सम्यक कीर्तन, जो परिपूर्ण कीर्तन है। तो कीर्तन को परिपूर्ण कीर्तन कैसे बनाया जाता है? भक्तों के संग में, हालांकि अकेले बैठकर भी किया जा सकता है। हरि नाम के लिए कोई ऐसे निषेध नहीं कि अकेले बैठ के आपको नहीं करना चाहिए, बल्कि करना चाहिए। फिर भी सबसे लाभदायक वो कीर्तन है जो कि भक्तों के संग में रहकर किया जाए। आपने देखा होगा कल परसों जब हम भक्त लोग कितने उत्साह से कीर्तन कर रहे थे, क्योंकि ये वातावरण में जब भक्तों के साथ हम बैठते हैं तो ये कीर्तन का विशेष प्रभाव पड़ता है, इसको संग कीर्तन कहते हैं। तो भक्तों के संग में आके जब हम इन्हीं चीजों को करेंगे तो लाभ अधिक होगा, और जब संग नहीं प्राप्त कर सकते हैं भक्तों का तब ठीक है अकेले में हम कर लें। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री चूलन यात्रा महोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरे हरे।